अब ऐसा है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उसमें सन 2000 में जब से वो सामरिक साझेदारी की समझौता हुआ था उसके बाद से हर साल ये समिट मीटिंग होती है। तो पिछले 15-16 साल में जो पूरी 15 समिट्स हो चुकी हैं, तो उसके बाद से हर समिट मीटिंग में मुख्य तौर से तीन चार मुद्दों के ऊपर बात होती है। एक तो ये है कि भारत जो वहां से पूरा फौजी साजो सामान खरीदता आ रहा है, क्योंकि भारत रूस की सबसे बड़ी मंडी है। दूसरा, व्यापार के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, यही तीन चार मेजर मुद्दे रहे हैं जिसके ऊपर हमेशा बात होती है। और लगभग अगर हम देखें इन पूरी समिट मीटिंग्स में कोई 160 के करीब एग्रीमेंट्स, एमओयूज वगैरह, डिक्लेरेशन अभी तक साइन हुए हैं। काफी पे कुछ काम हो रहा है लेकिन अभी तक कुछ पे कोई ज्यादा, सिर्फ कागजों में ही बातें रह गई हैं। अब मुख्य मुद्दे अब ये है कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि रूस की जो विदेश नीति है उसमें भी काफी बदलाव आए हैं, हमारी विदेश नीति में भी काफी बदलाव आए हैं, खासतौर से पिछले कुछ सालों से जो भारत अमेरिका के करीब आता जा रहा है, और जो पूरा हथियार वगैरह है वो भी अमेरिका से, फ्रांस से, उनसे भी खरीद रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी काफी, और जैसे कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि थोड़ा सा रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी हो रहा है। तो इस तरह से बदलाव तो काफी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो काफी समझ है, काफी दोनों देशों के बीच में जो बनी हुई है वो बरकरार है, और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशंस हैं राजनीतिक तौर से अभी भी काफी मजबूत हैं, काफी गाढ़े हैं। लेकिन सबसे जो एक कमजोर कड़ी जो है वो भारत और रूस के संबंधों की जो पिछले कई साल से चली आ रही है कि वो जो व्यापारिक संबंध है भारत और रूस के, वो बहुत ज्यादा कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो सिर्फ जैसे भारत की अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के फिगर देखे तो 6-7 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, रूस के फिगर देखे तो 10 बिलियन के करीब होता है, लेकिन वो फिर भी ये बहुत कम है। क्योंकि अगर आप देखें जब भारत सोवियत संघ का जमाना था तो सोवियत संघ जो था वो भारत का सबसे नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर था। अभी वो अगर भारत के 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स भी देखते हैं उसमें भी रूस कभी आता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अगर आपकी बहुत अच्छा संबंध राजनीतिक तौर से है लेकिन अगर उसकी मजबूत जड़ें अगर वो आर्थिक तौर से नहीं है तो उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत काफी सालों से आ रही है। लेकिन फिर भी जो दो तीन एरियाज हैं जिसके अंदर रूस की कंपैरेटिव एडवांटेज है, चाहे वो आर्म्स इंडस्ट्री है, चाहे वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है या हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए फिर भी भारत एक अच्छी मार्केट है। भारत ने उसको काफी जो है मतलब उसको मार्केट दिया है अपना, और भारत की कंपनीज ने, खास तौर से जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, 6-7 बिलियन जो है वहां पे निवेश भी किया है, पहले सकालिन 1 में, उसके बाद इंपीरियल एनर्जी में, और न्यूक्लियर जो है उसके भी काफी एक लंबा चौड़ा, अभी अभी पिछले महीने एक नया जो कोंडाकुलम में जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था शुरू हुआ था, और उसका एक लंबा खाका कई साल पहले तैयार हुआ था कि भारत के अंदर रूस जो है 20-25 जो वो लगाएगा न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरह से वो एक तो है कि काफी मजबूती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ब्रिक्स के साथ जो समिट होगी, जो खबरें अभी तक आ रही है कि कुछ बड़े फौजी सामान भारत रूस से भी खरीदने जा रहा है, उसमें कुछ फ्रिगेट्स हैं, कुछ मिसाइल्स वगैरह का है। तो अगर तो इस आने वाली समिट मीटिंग में कुछ अच्छे सौदे फिर हो जाते हैं तब तो होगा कि काफी मजबूत जो है भारत के संबंध जैसे पहले आ रहे थे वही होंगे। अगर वो नहीं हो पाते हैं तो फिर रूस को भी लगेगा कि शायद जो बड़ी मंडी रूस के लिए भारत था वो धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो उसके बाद
जी
उसके परिणाम शायद वहां की विदेश नीति और हमारे संबंधों पे भी लंबे समय में पड़ सकते हैं।
जी प्रोफेसर सचदेवा, ये बताइए कि अगर सामरिक स्तर पर बात करें, क्योंकि जिस तरह से भू राजनीति परिवर्तित हो रही है विश्व भर में, तो सामरिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि भारत और रूस के रिश्ते इतने गहरे हैं कि चाहे भारत के किसी और देश से संबंध हो नहीं हो या रूस के किसी और देश से संबंध हो नहीं हो, ये बहुत गहरे रिश्ते हैं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जब भी थोड़ा बहुत भी समीकरण में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव भारत और रूस के रिश्तों पर भी पड़ सकता है?
ये दोनों बातें सही हैं। एक तो ये है कि जब भी समिट मीटिंग हुई है, जो भारत और रूस के नेता मिले हैं, उन्होंने ये साफ तौर से स्पष्ट किया है कि हमारे जो दोनों देशों के संबंध है, उसका रूस के दूसरे देशों के संबंध से या भारत के दूसरे देशों का संबंध से उससे कोई सीधा कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो तो राजनीतिक तौर से कहने की बात है। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से भू राजनीति इस पूरे इलाके में बदल बदल रही है, तो उसमें निश्चित तौर से जैसे अमेरिका अपना अभी ज्यादा दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से जिस तरह से चीन का दबाव पूरे एशिया के अंदर बढ़ रहा है, और आजकल क्योंकि थोड़ी सी उसके अंदर तनाव है रूस और अमेरिका के संबंधों में यूक्रेन के संकट के बाद से, और जो और जितने पश्चिम के देश है, खास तौर से यूरोप के देश भी, तो इस तरह से पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आया है और भारत के संबंध पहले से काफी ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं अभी अमेरिका के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारत उनसे साजो सामान फौजी अगर खरीदता रहेगा पहले की तरह से, तब उसमें शायद बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर जो मेन मार्केट, क्योंकि 2007-08 के बाद से चीन से भी ज्यादा जो हथियार है वो भारत रूस से खरीद रहा है, तो अगर वो उसकी मंडी यहाँ पहले से छोटी हो जाती है, तब निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उसका कुछ परिणाम बाद में जो दोनों के जो सामरिक संबंध है उसमें भी शायद कहीं पड़ सकता है।
जी
जैसे अभी जो खबर है कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध थोड़े पहले से अच्छे हुए हैं,
जी
ये बात सही है कि घटनाक्रम बदल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस सब के बावजूद फिर भी मुझे लगता है कि भारत और रूस के संबंध जो है वो काफी मजबूत हैं, और जब तक भारत वहां से सामान फौजी साजो सामान खरीदता रहेगा, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने की संभावना मुझे नहीं लगती।
एक आखिरी सवाल प्रोफेसर सचदेवा आपसे, कि जब क्राइमिया वाला घटनाक्रम हुआ था और क्राइमिया अब रूस का हिस्सा बन गया है, उस वक्त भारत ने एक बड़ा ही ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल स्टांस लिया था, और खबरें हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने, भारत और चीन दो देश थे, उनकी प्रशंसा भी की थी उन्होंने जो पोजिशन ली थी। क्या आपको लगता है कि ये जो बात है ये भुलाई नहीं जाएगी आसानी से?
नहीं, बात अभी कोई बहुत पुरानी नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो यूक्रेन का जो संकट है अभी कोई वो खत्म नहीं हुआ है, और अभी भी रूस चाहेगा कि जितने भी देश, भारत हो, चीन हो या और कोई देश हो, जो अगर रूस की किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अगर निंदा नहीं करते हैं या एटलीस्ट उसकी सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ये चीजें मायने रखती हैं। और जैसे पिछले ब्रिक्स समिट में जब एक बार मोदी जी से पूछा गया था कि भारत और रूस के संबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे, तब उन्होंने एक बात कही थी, वो शायद काफी हद तक सही है, कि भारत में अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि भारत का सबसे करीबी दोस्त कौन सा है, तो मेजोरिटी जो है वो लोग शायद रूस के बारे में ही कहेंगे कि रूस ही भारत का सबसे सच्चा दोस्त है। तो वो एक जो बात है वो काफी हद तक सही है। उसमें यह है कि भारत के संबंध भले ही अभी अमेरिका के साथ अच्छे हो गए हों या रूस के संबंध चीन के साथ अच्छे बन रहे हों, लेकिन जो ट्रस्ट है भारत और रूस का आपस में संबंधों का, वो ना रूस और चीन के संबंधों में है, ना ही वो अमेरिका और भारत के संबंधों में अभी तक आ पाया है। तो इसलिए जो एक ट्रस्ट है वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इतने सालों से जब कभी भी किसी के ऊपर संकट आया है, चाहे वो भारत के ऊपर हो, चाहे वो अभी किसी भी अगर किसी मुश्किल में रूस फंसता नजर आता है, तो बाकी सब चीजों को भुला के भारत ने रूस की मदद की है और रूस ने भारत की मदद की है। तो वो एक जो इस तरह का संबंध भारत और रूस का बना हुआ है, जो सोवियत जमाने से चला आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है इस पूरे भारत और रूस के संबंधों में, और वो हमेशा मुझे लगता है अभी तक वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अब वो बदलते हुए समय के साथ चीजें बदल रही हैं, मार्केटें बदल रही हैं, हमारे कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स बदल रहे हैं, रूस के भी बदल रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित तौर से पड़ेगा। लेकिन जब कोई कसौटी का, जब कोई ऐसी मुद्दा आता है, तो फिर भी ये देखा गया है कि भारत और रूस एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं।
प्रोफेसर सचदेवा, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।